हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मेहर एक क्रिमिनल लॉयर के पास चली जाती है अरमान के केस के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि कोई भी लॉयर अरमान का केस लेने के लिए तैयार नहीं था। और मेहर जिस लॉयर के पास गई थी वो कोई आम लॉयर नहीं था, वो क्रिमिनल केसेस की दुनिया का बादशाह था। अगर वो एक बार केस अपने हाथ में ले लेता तो उसकी गारंटी होती थी वो केस जीतने की। उस लॉयर का नाम आदित्य लॉय था, जिसका केस लेने का मतलब था हर हाल में विजय होना। मेहर ने आदित्य को अरमान का केस लड़ने के लिए फीस दे दी थी। वो फीस कुछ और नहीं बल्कि आदित्य के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने की थी। आदित्य के साथ रिश्ता बनाने के बाद वो ठाकुर मेंशन लौट आई थीं, और जैसे ही वो अपने कमरे में गई थीं उसने देखा कि राजवीर उसके कमरे में पड़े सोफे पर बैठकर सिगरेट के कस लगा रहा था। मेहर राजवीर को वहां देखकर चौंक गई थी, और अगले ही पल वो अपने आप को नॉर्मल करते हुए राजवीर से बोली थी, राजवीर जी आ गए आप। राजवीर ने अपने मुंह से एक वर्ड भी नहीं बोला था, वो तो बस मेहर को ऊपर से लेके नीचे तक देखने में बिजी था। और जल्दी ही उसे मेहर की नेक के पर बना लव बाइट और साथ ही साथ शोल्डर, हल्की हल्की नजर आती चेस्ट का ऊपरी हिस्सा और साथ ही साथ होठों के पास गहरा निशान साफ नजर आ रहे थे। राजवीर गहरी गहरी नजरों से मेहर को देखे जा रहा था। मेहर ने जैसे ही राजवीर की नजरों का पीछा किया उसे एहसास हो गया था कि जरूर राजवीर उसके जिस्म पर बने निशानों को देख रहा है। मेहर ने एक बार खुद को आईने में देखा और अपने जिस्म के हर हिस्से को और उन निशानों को बड़े ही प्यार से छूने लगी थीं। मेहर की ये हरकत राजवीर के अब बर्दाश्त के बाहर थी। राजवीर ने अपने हाथ में पड़ी सिगरेट को जमीन पर फेंका और उसे अपने जूते से रगड़ दिया, और उसके बाद वो मेहर की ओर आगे बढ़ने लगा था। मेहर ने उसे आईने में देख लिया था कि वो उसकी ओर ही आ रहा है, लेकिन उसने बेपरवाही से उसका आना इग्नोर कर दिया था और उसी तरह से अपने जिस्म पर बने निशानों को प्यार से सहलाती रही थी। तभी अचानक राजवीर ने ठीक उसके पीछे जाकर उसके बालों को बड़ी ही बेदर्दी से पकड़ लिया था और जोर से खींचते हुए उसे बेड पर दे मारा था। मेहर के मुंह से दर्द भरी आह निकल गई थी, लेकिन केवल उसके मुंह से आह निकली थी, उसकी आंखें एकदम सूखी थीं। उसकी आंखों में नाम मात्र को भी आंसू नहीं था, उल्टा उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी। राजवीर को उसे देख देख कर बेहद गुस्सा आ रहा था, और अब जब उसने मेहर को स्माइल करते हुए देखा तो उसके होश उड़ गए थे, और वो बोला था, किसके पास गई थी तुम बताओ मुझे, किसके साथ मुंह काला करके आई है तू बता मुझे। ऐसा कहकर राजवीर ने जोरदार तमाचा उसके मुंह पर दे मारा था। मेहर चांटा लगते ही जोर जोर से हंसने लगी थीं और बोली थी, एक और मारो पतिदेव, रुक क्यों गए। मेरे ख्याल से पतिदेव जी आज तो तुम्हें अपने कमरे में बैठकर रोना चाहिए। तब मेहर राजवीर के कानों के पास गई और बोली, तुम्हें खूब रोना चाहिए क्योंकि आज मेरी नहीं तुम्हारी इज्जत लूट चुकी है, आज मिसेज मेहर राजवीर की इज्जत लूटी है। ऐसा कहकर मेहर जोर जोर से हंसने लगी थी। राजवीर का गुस्सा अब सातवें आसमान पर पहुंच चुका था और वो उसे बेड पर धक्का देकर उस कमरे में से निकल गया था, और मेहर हल्की सी मुस्कान और आंसुओं के साथ बेड पर लेटी हुई सो चुकी थी। वहीं अकरम और रिया हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे, जिस हॉस्पिटल में अरहम को एडमिट कराया गया था। रिया और अकरम जल्दी ही हॉस्पिटल पहुँच चुके थे। उन्होंने देखा गजाला जी अबीर की सौतेली माँ डॉक्टर से कुछ बातचीत कर रही थी। अकरम उनके पास गया और बोला था, मैम अब कैसी तबीयत है अरहम की। तब गजाला जी आंखों में आंसू लाकर बोली थीं, अभी अभी होश आया था, लेकिन होश में आने की कुछ देर बाद ही वो फिर से बेहोश हो गया था। अकरम क्या हम उससे मिल सकते हैं। गजाला जी ने एक नज़र अकरम की ओर देखा और एक बार रिया की ओर देखा और फिर बोली थी कि ठीक है बेटा जाओ, तुम देखा उसको देख लो कितनी बुरी हालत की है मेरे बेटे की उन गुंडों ने। रिया और अकरम ने एक दूसरे को देखा और रिया गजाला जी की गुंडों वाली बात सुनकर रिया हल्का सा मुस्कुरा दी थी और अकरम के साथ अरहम को देखने जाने लगी थी। रिया को मुस्कुराता देख गजाला जी देख चुकी थी और ढेर सारे अंदेशों ने उन्हें आ घेरा था। रिया और अकरम जैसे ही अंदर गए उन्होंने देखा था एक बड़े से बेड पर सिर पर हाथ पैरों पर पट्टी बंधे हुए अरहम लेटा हुआ था। उसको देखते ही रिया की आंखों में खून उतर आया था और वो एक जगह खड़ी हुई उसे देखती रही थीं। तभी अचानक रिया को अरहम के द्वारा किया गया एक एक अन्याय उसे याद आने लगा था, किस तरह से अरहम ने उसकी इज्जत को बर्बाद किया था। एक एक करके उसके सामने एक एक सीन फ्लैशबैक की तरह उभर आया था और वो उसी तरह बर्फ के जैसे जम गई थीं और एकटक अरहम की ओर देखे जा रही थीं। अकरम उसे देख चुका था और वो उसे सहारा देने के लिए भी उसके पास नहीं गया था। अकरम चाहता था रिया खुद बखुद अरहम को फेस करे, क्योंकि जब तक वो अपने डर से आगे नहीं बढ़ेगी, उसका सामना नहीं करेगी, तब तक वो अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगी। अकरम बेड पर बेहोश पड़े हुए अरहम के पास गया और उसके पास बैठ गया और उसके रिडल लगे हुए हाथ पर हाथ रखकर बोला था, कैसे हो तुम अरहम ठाकुर? अपने साथ किसी को महसूस करके अरहम ने सोचा था कि अब उसे आंखें खोल लेनी चाहिए, क्योंकि जब अरहम होश में आया था तब उसके होश में आते ही इसकी माँ ने बेकार का रोना धोना शुरू कर दिया था और अरहम को उनकी थॉट क्लास एक्टिंग पसंद नहीं आई थी। इसीलिए उसने सोचा अपनी माँ का झूठा दुखरा सुनने से तो अच्छा है कि क्यों न वो फिर से बेहोश हो जाएं। ये सोचकर उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन अब जब किसी और की आवाज़ उसने सुनी तो उसने सोचा क्यों ना अब अपनी आंखें खोल ली जाएं और खोलकर ये चेक किया जाए कि आखिर क्यों इस आने वाले ने उसे दर्द दिया था, क्योंकि वो जो कोई भी था उसने अरहम के रिडल लगे हुए हाथ पर रखा था, जिसके कारण अरहम को दर्द हो रहा था। वहीं दूसरी ओर ज़ोया अबीर की बाहों में बेहोश हो चुकी थी। अबीर जल्दी से ज़ोया को बाहों में लेकर बाहर की ओर भागा था और उसने चिल्लाकर गाड़ी निकालने को अपने आदमी से बोला था और जल्दी ही गाड़ी में बिठाकर वो उसे हॉस्पिटल की ओर लेकर रवाना हो चुका था। अबीर बड़े ही प्यार से ज़ोया को अपनी गोद में लिटा रखा था। ज़ोया की नाक पूरी लाल हो चुकी थी, जिसे देखकर अबीर समझ गया था कि ज़रूर ये बहुत ही ज़्यादा रोई होगी। अबीर उसके गालों पर रोने के निशान देखकर तड़प उठा था और उसने उसके चेहरे को अपने सीने में छुपा लिया था और बोला था, मेरी बीवी ने अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी में उम्र भर के दुख देख लिए थे। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा, इतनी मोहब्बत दूंगा, इतनी ज़्यादा मोहब्बत दूंगा कि तुम्हारी ज़िंदगी के सारे दर्द खत्म कर दूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके निशान तुम्हारे जिस्म पर नहीं बल्कि तुम्हारी रूह पर हैं, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ जिस्म पर लगे जख्म तो भर जाते हैं लेकिन रूह पर लगे जख्म कभी नहीं भरते। ज़ोया बेहोशी की हालत में थी, लेकिन अबीर की बातें उसके दिमाग में बैठ गई थीं। जल्दी ही अबीर ज़ोया को लेकर हॉस्पिटल पहुँच गया था और सीधा VIP रूम के इमरजेंसी वार्ड में लेकर गया था। ज़ोया को बेहोश देखकर अबीर की हालत बड़ी ही अजीब सी हो रही थी। अब अबीर की ज़िंदगी में अगर परिवार के नाम पर कोई था तो वो सिर्फ और सिर्फ ज़ोया थी। जल्दी ही ज़ोया का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था और तब तक अबीर उसका हाथ पकड़े हुए बैठा रहा था। अबीर की आंखों के किनारे भीगे हुए थे और तभी डॉक्टर ने अबीर से कहा था, सर, मैडम के कुछ टेस्ट होने हैं, इसके लिए आपको बाहर जाना होगा। लेकिन अबीर ने साफ इनकार कर दिया था और वो बोला था, नहीं, मैं अपनी बीवी को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इसके पास ही रहूंगा। तब डॉक्टर ने अबीर को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अबीर ने साफ इनकार कर दिया था और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अबीर राठौड़ पर अपना हुक्म चला सके। और डॉक्टर के दूसरी बार बोलने पर उसने कड़ी नज़र से डॉक्टर की ओर देखा था। अबीर की नज़रें देखकर डॉक्टर अपना थूक निगलने लगी थी। वो समझ गई थी कि अगर अब उसने कुछ और बोला तो पक्का आज उसका आखिरी दिन हो सकता था। तब डॉक्टर ने अबीर की मौजूदगी में अपना इलाज करना शुरू कर दिया था। अबीर तभी डॉक्टर एक सिरिंज हाथ में लेकर आई थी ज़ोया का ब्लड लेने के लिए। डॉक्टर को अबीर के सामने ज़ोया का ब्लड लेने में डर लग रहा था, लेकिन ज़ोया के टेस्ट करने के लिए ब्लड लेना तो ज़रूरी थी, इसलिए डॉक्टर ने डरते हुए अबीर से कहा था, अबीर साहब, मैडम का ब्लड लेना है। अबीर, लेकिन क्यों? तब डॉक्टर, सर, टेस्ट के लिए। तब अबीर, किसी और तरीके से ये टेस्ट नहीं हो सकते हैं क्या, जिसमें मेरी बीवी को दर्द नहीं? तब डॉक्टर, नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है, हमें मैडम के टेस्ट करने के लिए खून लेना होगा और उस खून की जांच के बाद ही हम मैडम के हालात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तब अबीर, ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान से ब्लड लेना, उसे ज़्यादा दर्द नहीं होना चाहिए। जहाँ डॉक्टर पहले अबीर से डर रही थी, वही वो डॉक्टर अब अबीर की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी, मैंने तो सुना था अबीर राठौड़ के सामने कोई सिर नहीं उठा सकता है, ये तो बिल्कुल बच्चों की तरह लग रहे हैं मुझे। तभी डॉक्टर ने ज़ोया का ब्लड ले लिया और अबीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा लग रहा था खून ज़ोया का नहीं बल्कि अबीर का लिया गया हो। डॉक्टर के ब्लड निकालते ही अबीर जल्दी से ज़ोया का हाथ जल्दी से मलने लगा था। डॉक्टर मुस्कुराकर ज़ोया के खून की जांच करने के लिए चली गई थी। रचना, 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 रचना। प्रणव।